एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं गहरे और अक्सर गलत समझे जाने वाले विषय पर बात करने जा रहे हैं, यहूदी धर्म। और इस सफर में हमारी गाइड होंगी नॉर्मन सोलोमन की किताब जूडेइज्म, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, और इससे जुड़ी कुछ और सामग्री।
बिल्कुल, और ये विषय अहम है क्योंकि देखिए, यहूदी धर्म दुनिया की सबसे पुरानी एकेश्वरवादी परंपराओं में से है। इसका असर ईसाइयत और इस्लाम पर भी साफ दिखता है।
हाँ बिल्कुल,
लेकिन फिर भी इसे लेकर कई तरह की मतलब अधूरी धारणाएं हैं।
हाँ।
और आज की इस कनेक्टेड दुनिया में मुझे लगता है अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों को सही मायने में समझना तो बहुत ही जरूरी हो गया।
सही कहा, और सोलोमन की किताब की यही तो खूबी है, वो यहूदी धर्म को सिर्फ कुछ मान्यताओं या यू नो रस्मों के ढांचे में नहीं बांधती।
नहीं, बिल्कुल नहीं,
बल्कि उसे एक जीती जागती लगातार विकसित होती हुई सभ्यता की तरह पेश करती है। ये हमें उन सतही बातों से काफी आगे ले जाती है।
चलिए पहले लेखक पर थोड़ी बात कर लेते हैं। रब्बी डॉक्टर नॉर्मन सोलोमन, वो इस विषय पर लिखने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प शख्सियत हैं। उनकी पृष्ठभूमि जैसा आपने कहा काफी अनोखी है।
हाँ अनोखी तो है, एक तरफ तो वो पारंपरिक यहूदी शिक्षा पाए हुए हैं, एक रूढ़िवादी रब्बी के तौर पर उन्होंने काम भी किया है,
और दूसरी तरफ वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे बड़े अकेडमिक संस्थान में विद्वान भी रहे, तो उनमें परंपरा की एक गहरी भीतरी समझ भी है और एक बाहरी विश्लेषणात्मक नजरिया भी।
और यही दोहरा दृष्टिकोण शायद उनकी लेखनी को खास बनाता है ना, मतलब अंदर और बाहर दोनों नजरिए से देखना।
हाँ बिल्कुल, वो यहूदी धर्मशास्त्र, नैतिकता और खासकर इंटरफेथ डायलॉग यानी विभिन्न धर्मों के बीच संवाद, इसके विशेषज्ञ रहे हैं। और उनकी खासियत ये है कि वो मुश्किल यहूदी अवधारणाओं को उनकी गहराई कम किए बिना आम पाठक के लिए सुलभ बना देते हैं। वो परंपरा के प्रति सम्मान और जो अकादमिक जांच पड़ताल है उसके बीच एक अच्छा संतुलन साधते हैं।
अच्छा, तो फिर ये किताब असल में क्या कहना चाहती है? जैसा हमने शुरू में कहा, ये यहूदी धर्म को किसी स्थिर मतलब पत्थर की लकीर जैसा नहीं देखती। सोलोमन का मुख्य तर्क क्या है?
उनका मुख्य तर्क यही है कि यहूदी धर्म को आप आसानी से डिफाइन नहीं कर सकते, ये कोई बनी बनाई चीज नहीं है।
तो फिर क्या है?
वो इसे एक गतिशील, हमेशा विकसित होने वाली, यू नो मल्टी लेयर्ड, कई परतों वाली सभ्यता मानते हैं। इसकी पहचान बनती है इसके ग्रंथों से, इसके कानूनों से, और सबसे बढ़कर इन सब पर लगातार चलने वाली एक बातचीत और बहस से।
अच्छा, बातचीत और बहस से?
हाँ, एक ऐसी बहस जो पीढ़ियों से चली आ रही है। ये एक जीवित परंपरा है जिसने इतिहास के उतार चढ़ाव झेले हैं, दुनिया भर में फैली है, नए विचारों से टकराई हैं, और इस सब के दौरान खुद को लगातार बदला है, अपनी नई व्याख्याएं गढ़ी हैं।
तो किताब का मूल सवाल शायद यही है कि आखिर यहूदी धर्म है क्या?
हाँ बिल्कुल, और सोलोमन का जवाब दिलचस्प है। वो कहते हैं कि इसे कुछ पक्के विश्वासों के सेट की तरह देखने के बजाय इसे एक लगातार चलने वाली कहानी, एक जीवंत तर्क वितर्क वाली प्रक्रिया के रूप में समझना सबसे बेहतर है।
एक प्रक्रिया?
हाँ, एक ऐसी प्रक्रिया जो जीवन को, समय को, समुदाय को मायने देती है, उन्हें पवित्र बनाती है।
और ये किताब सिर्फ धर्म के छात्रों के लिए नहीं होगी फिर?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी जिज्ञासु इंसान जो इतिहास, संस्कृति या अलग अलग धर्मों को समझना चाहता है, या फिर वो यहूदी जो अपनी विरासत को एक आधुनिक विद्वत्तापूर्ण नजरिए से देखना चाहते हैं, उन सब के लिए इसमें बहुत कुछ है।
चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। किताब की शुरुआत ही एक बड़े पेचीदा सवाल से होती है, जैसा आपने बताया, यहूदी कौन है? सुनने में तो आसान लगता है ये सवाल।
हाँ लगता है, पर इसका जवाब उतना सीधा नहीं है। पारंपरिक परिभाषा क्या कहती है आप जानते हैं?
हाँ, पारंपरिक परिभाषा जिसे हलाखा कहते हैं, मतलब यहूदी धार्मिक कानून, उसके मुताबिक तो यहूदी वो है जिसकी माँ यहूदी हो या जिसने विधिवत धर्म परिवर्तन किया हो।
सही।
लेकिन सोलोमन बताते हैं कि आज की दुनिया में ये परिभाषा अकेली काफी नहीं है। यहूदी होना सिर्फ एक धार्मिक पहचान का मामला नहीं रह गया है।
मतलब?
और क्या पहलू हैं इसके? क्या सिर्फ धर्म नहीं है?
नहीं, ये एक धर्म तो है ही, पर साथ ही ये एक लोग या राष्ट्र होने का एहसास भी है, जिसे हिब्रू में आम इज़राइल कहते हैं।
आम इज़राइल?
हाँ, जिसका मतलब है एक साझा इतिहास, एक साझा नियति, एक सामूहिक पहचान। ये पहचान धार्मिक मान्यताओं से परे भी जाती है और फिर ये एक संस्कृति भी है अपनी भाषाओं के साथ, जैसे हिब्रू है, यिडिश है,
साहित्य, संगीत, खान पान,
बिल्कुल, यहाँ तक कि उनका ह्यूमर, हास्य भी, ये सब मिलकर यहूदी पहचान बनाते हैं।
और आजकल तो ये और भी जटिल हो गया है, क्योंकि बहुत से लोग खुद को सांस्कृतिक या जातीय रूप से यहूदी मानते हैं, भले ही वो धार्मिक रस्मों का पालन करें या ना करें।
जिसे हम सेक्युलरिज्म कहते हैं, उसने इस पहचान को और भी बहुआयामी बना दिया है। फिर इसमें इसराइल के लॉ ऑफ रिटर्न जैसे कानून भी हैं, जिनके अपने राजनीतिक पहलू हैं। तो हाँ, ये पहचान का सवाल वाकई कई परतों वाला है।
अच्छा, इसके बाद किताब हमें इतिहास के सफर पे ले जाती है, और आपने कहा कि यहूदी नजरिए से इतिहास सिर्फ घटनाओं का क्रम नहीं है।
नहीं, इसे ईश्वर के साथ एक निरंतर संवाद की तरह देखा जाता है। कहानी शुरू होती है बाइबल की उत्पत्ति से, अब्राहम, मूसा, सिनाई पर्वत पर टोरा यानी ईश्वर के नियमों का मिलना, और ईश्वर के साथ वो खास वाचा जिसे ब्रिट कहते हैं, उसका कायम होना।
और फिर यरूशलेम में मंदिर का दौर आता है, पहला मंदिर, फिर दूसरा मंदिर, लेकिन एक बड़ा मोड़ तब आता है जब 70 ईस्वी में रोमन साम्राज्य दूसरा मंदिर नष्ट कर देता है। ये तो बहुत बड़ी घटना मानी जाती है।
हाँ, यहूदी इतिहास में इसे सिनाई वाली घटना के बाद सबसे अहम मोड़ माना जाता है। अब सवाल था कि मंदिर के बिना धर्म कैसे चलेगा।
हाँ, कैसे बचा रहा है धर्म।
यहीं पर रब्बिनिक यहूदी धर्म का उदय होता है। रब्बियों ने यानी विद्वानों और शिक्षकों ने एक रास्ता निकाला। उन्होंने कहा, मंदिर नहीं तो क्या हुआ, हम प्रार्थना से, टोरा के अध्ययन से और रोजमर्रा की जिंदगी में यहूदी कानूनों, हलाखा का पालन करके ईश्वर से जुड़ सकते हैं।
अच्छा,
इन्हीं व्याख्याओं और कानूनों को बाद में मिशना और फिर तलमूड जैसी विशाल किताबों में संकलित किया गया। एक तरह से कहें तो उन्होंने धर्म को पोर्टेबल बना दिया।
पोर्टेबल मतलब कहीं भी ले जाने लायक।
हाँ, मतलब जिसे किसी एक खास जगह जैसे मंदिर की जरूरत नहीं थी। और यही वजह है कि यहूदी धर्म दुनिया भर में बिखरने यानी डायस्पोरा में जाने के बाद भी न सिर्फ जिंदा रहा बल्कि फला फूला भी।
ये तो कमाल की अडैप्टेबिलिटी मतलब अनुकूलन क्षमता है। और ये डायस्पोरा का जीवन कैसा था, क्या सब जगह एक जैसा था?
नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब इसके मिले जुले अनुभवों की बात करती है। कहीं स्पेन जैसे देशों में स्वर्ण युग आया जहां यहूदी संस्कृति, दर्शन, विज्ञान खूब विकसित हुए, तो वहीं यूरोप में धर्म युद्धों के दौरान या बाद में कई देशों से उन्हें निकाला गया, उन पर भयानक अत्याचार हुए। तो ये इतिहास धूप और छांव दोनों से भरा है।
और फिर आधुनिक युग आता है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसके क्या मुख्य प्रभाव रहे यहूदी धर्म पर?
सोलोमन तीन बड़े प्रभावों की बात करते हैं। पहला, यूरोप में 18वीं-19वीं सदी का ज्ञानोदय जिसे हिब्रू में हस्काला कहते हैं। इसने यहूदियों को नागरिक अधिकार तो दिलाए लेकिन उनकी पारंपरिक पहचान के लिए नई चुनौतियों भी खड़ी की।
चुनौतियां किस तरह की?
मतलब ये सवाल कि आधुनिक समाज के साथ कैसे जुड़ा जाए अपनी पहचान बनाए रखते हुए। इसी दौर में यहूदी धर्म के भीतर आधुनिक धाराएं उभरी, जैसे सुधारवादी, रिफॉर्म, रूढ़ीवादी, ऑर्थोडॉक्स और परंपरावादी, कंजर्वेटिव। ये सब आधुनिकता से तालमेल बिठाने की अलग अलग कोशिशें थीं।
अच्छा, ये पहला प्रभाव था, और बाकी दो?
दूसरा, 20वीं सदी का हॉलोकॉस्ट जिसे हिब्रू में शुआ कहते हैं, नाजी जर्मनी द्वारा यहूदियों का वो भयानक नरसंहार। इसने ईश्वर में आस्था, इंसानियत और ईश्वर के साथ उस वाचा पर बहुत गहरे और दर्दनाक सवाल खड़े कर दिए।
जाहिर है।
और तीसरा, ज़ायोनिज्म का उदय और फिर इसराइल राज्य की स्थापना। ये यूरोप में बढ़ते यहूदी विरोध की प्रतिक्रिया भी था और अपनी ऐतिहासिक जमीन पर राष्ट्रीय संप्रभुता हासिल करने का एक आंदोलन भी। इसने एक तरफ घर वापसी का सपना पूरा किया तो दूसरी तरफ नई राजनीतिक और नैतिक दुविधाएं भी पैदा की।
इतिहास की ये परतें वाकई बहुत गहरी और जटिल हैं। अब आते हैं उन ग्रंथों पर जो इस सभ्यता के केंद्र में हैं। आपने टोरा का जिक्र किया था, लिखित और मौखिक टोरा।
हाँ, मूल यहूदी मान्यता है कि ईश्वर ने मूसा को सिनाई पर्वत पर दो तरह की टोरा दी। एक लिखित टोरा, जो हिब्रू बाइबल के पहले 5 ग्रंथ हैं जिन्हें पेंटेट्यूक भी कहते हैं, और दूसरी मौखिक टोरा यानी उन नियमों और व्याख्याओं की परंपरा जो लिखी हुई नहीं थी बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से सिखाई जाती थी। और तलमुड, मैंने सुना है कि वो बहुत विशाल और जटिल ग्रंथ है, क्या वो इस मौखिक टोरा का ही लिखित रूप है?
हाँ, एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। सुलोमन इसे रब्बिनिक यहूदी धर्म का दिल कहते हैं, पर यह कोई व्यवस्थित कानून की किताब या थियोलॉजी की टेक्स्ट बुक नहीं है।
तो फिर क्या है
ये? असल में रब्बियों की कई पीढ़ियों के बीच हुई कानूनी बहसों, नैतिक चर्चाओं, कहानियों, लोक कथाओं का एक विशाल, कई बार विरोधाभासी लगने वाला संग्रह है। आप अगर तलमूद का कोई पन्ना देखें तो पाएंगे कि बीच में मूल पाठ, मिशना या गिमारा होता है, और उसके चारों ओर अलग अलग दौर के रब्बियों की टिप्पणियां, सवाल जवाब, बहसें परत दर परत जमी होती हैं।
अच्छा, ये तो बहुत अनोखा तरीका है टेक्स्ट को प्रस्तुत करने का। हाँ, और ये अपने आप में दिखाता है कि यहूदी धर्म कोई खत्म हो चुकी बात नहीं, बल्कि एक निरंतर चलने वाली बातचीत है। तलमूद तो बहस और असहमति को भी पवित्र मानता है। इसे महलोकेत कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इसी तर्क वितर्क से सच्चाई के अलग अलग पहलू सामने आते हैं और समझ गहरी होती है।
ये बात तो बहुत दिलचस्प है कि बहस भी पवित्र हो सकती है।
बिल्कुल, सोलोमन की एक बात मुझे याद आ रही है। उन्होंने कहा है, यहूदी धर्म को एक तयशुदा सवालों जवाबों वाले धर्म के बजाय अपने पवित्र ग्रंथों के अर्थ और ईश्वर के साथ वाचा में जीने के सबसे अच्छे तरीके के बारे में एक सतत, कई पीढ़ियों तक चलने वाले तर्क वितर्क के रूप में बेहतर समझा जाता है।
यानी बहस भी सीखने का एक तरीका है। तलमूद के अलावा और कौन से ग्रंथ अहम माने जाते हैं?
हिब्रू बाइबल का बाकी हिस्सा, जिसे तनख कहते हैं, जिसमें नबी और अन्य लेख शामिल हैं, फिर मध्यकाल के महान दार्शनिक जैसे मेमोनाइट्स की रचनाएं हैं, यहूदी रहस्यवाद यानी कबाला के ग्रंथ हैं, खासकर जोहर नाम की किताब, और बाद में बने कानूनी संग्रह हैं जैसे शुलचन अरूख। ये सब मिलकर यहूदी विचार और परंपरा का एक बहुत बड़ा और समृद्ध ताना बाना बुनते हैं।
समझ गई, अब बात करते हैं कि ये धर्म असल में जिया कैसे जाता है, पूजा और रीति रिवाज, इसका मूल भाव क्या है?
सोलोमन कहते हैं कि इसका मूल भाव है जीवन का पवित्रीकरण, मतलब रोजमर्रा के साधारण कामों को भी सही इरादे और अनुष्ठान के साथ करके उन्हें पवित्र और अर्थपूर्ण बनाना। एक और अहम बात जो सोलोमन कहते हैं वो ये कि यहूदी धर्म मुक्ति का नहीं बल्कि पवित्रीकरण का धर्म है।
पवित्रीकरण का धर्म, इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब है कि जोर परलोक सुधारने से ज्यादा इसी दुनिया में इसी जीवन को नैतिक और पवित्र बनाने पर है, हर काम को ईश्वर से जोड़ने की कोशिश।
तो इसमें प्रार्थना का क्या स्थान है?
प्रार्थना बहुत केंद्रीय है। इसने मंदिर में होने वाली पशु बलि की जगह ले ली। शमा, सुनो हे इसराइल, यहूदी आस्था का मूल मंत्र है, और सिनेगाग जो यहूदी प्रार्थना घर होता है उसे मिकदश में अत यानी छोटा पवित्र स्थान भी कहते हैं। वो सिर्फ पूजा की जगह नहीं बल्कि समुदाय के इकट्ठा होने, पढ़ने पढ़ाने का भी केंद्र है।
और शब्बत के बारे में क्या खास है? मैंने सुना ये बहुत महत्वपूर्ण है।
हाँ, बहुत ज्यादा। सोलोमन तो शब्बत को यहूदी धर्म का सबसे बड़ा और अनूठा अनुष्ठानिक आविष्कार मानते हैं। ये सिर्फ छुट्टी का दिन नहीं है, ये हफ्ते में एक बार आने वाला 25 घंटे का ऐसा समय है जिसे समय में बना एक महल कहा गया है।
समय में बना महल?
हाँ, मतलब एक ऐसा समय जब दुनिया का सारा कामकाज रुक जाता है और ध्यान पूरी तरह शांति, परिवार, समुदाय और आध्यात्मिक जुड़ाव पर होता है। ये दुनिया की भागदौड़ से एक जरूरी पवित्र ब्रेक है।
ये तो बहुत खूबसूरत विचार है, और यहूदी कैलेंडर और त्योहार वो भी तो बहुत अहम लगते हैं।
बिल्कुल, और वो इतिहास और प्रकृति यानी कृषि दोनों से गहरे जुड़े हुए हैं, जैसे रोश हशना यानी नया साल और यौम किप्पुर प्रायश्चित का दिन, ये सबसे पवित्र दिन माने जाते हैं, हाई होलीडेज। फिर हैं तीन तीर्थ त्योहार, पासओवर यानी मिस्र की गुलामी से मुक्ति का पर्व, शवयोत टोरा मिलने का पर्व, और सुक्कोट रेगिस्तान में भटकने की याद का पर्व। ये त्योहार सिर्फ छुट्टी नहीं है, ये कहानी सुनाते हैं और समुदाय को उसकी जड़ों से जोड़ते हैं।
और खाने के नियम जिन्हें कशरूत या कोशर कहते, क्या वो सिर्फ स्वास्थ्य के नियम हैं?
सोलोमन ऐसा नहीं मानते। वो इन्हें सिर्फ स्वास्थ्य या साफ सफाई के नियम नहीं मानते, बल्कि आत्मनियंत्रण, अनुशासन और पवित्रता का एक आध्यात्मिक अभ्यास मानते हैं। खाने जैसे रोजमर्रा के काम में भी ईश्वर को याद करने का और एक खास यहूदी पहचान बनाए रखने का एक तरीका।
अच्छा, और फिर जीवन के अलग अलग पड़ाव भी हैं, जन्म, वयस्कता, शादी, मृत्यु।
हाँ, जीवन चक्र की घटनाएं, जन्म पर लड़कों का खतना ब्रिट मिला, फिर वयस्कता की दहलीज पर बार मिट्सवा लड़कों के लिए या बैट मिट्सवा लड़कियों के लिए, फिर विवाह और अंत में मृत्यु और शोक की रस्में। ये सब रस्में जीवन के सफर को एक ढांचा, एक मायने और समुदाय का सहारा देती हैं।
अब अगर हम आधुनिकता पर वापस आएं, तो आपने उन तीन धाराओं का जिक्र किया था, रूढ़िवादी, सुधारवादी और परंपरावादी। क्या आप इन्हें थोड़ा और समझा सकते हैं?
हाँ, देखिए, रूढ़िवादी धारा मानती है कि लिखित और मौखिक टोरा दोनों ही ईश्वर प्रदत्त हैं और उनमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। वो पारंपरिक हलाका का सख्ती से पालन करते हैं।
ठीक है।
सुधारवादी धारा, जो ज्ञानोदय के प्रभाव में ज्यादा उभरी, वो नैतिक कानूनों को तो मानती है, पर रस्मों रिवाजों को समय और जरूरत के हिसाब से बदलने योग्य समझती है। वो मानते हैं कि धर्म को आधुनिक जीवन के साथ चलना चाहिए।
और परंपरावादी
हैं कि इसमें समय के साथ विकास हुआ है और आगे भी हो सकता है। वो परंपरा और बदलाव में संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं।
तो क्या ये धाराएं एक दूसरे से झगड़ती रहती हैं कि कौन असली यहूदी है, या ये एक दूसरे को स्वीकार करती हैं?
सोलोमन का नजरिया इस पर बड़ा संतुलित और कह सकते हैं गैर विवादास्पद है। वो कहते हैं कि इन्हें ऐसे नहीं देखना चाहिए कि ये आपस में लड़ रहे हैं कि कौन सही है।
तो फिर कैसे देखना चाहिए?
वो कहते हैं कि उन्हें प्राचीन परंपरा और आधुनिकता की चुनौतियों के बीच गहरे टकराव को समझने और उससे रास्ता निकालने की अलग अलग ईमानदार रणनीतियों के रूप में देखा जाना चाहिए। मतलब ये आधुनिक दुनिया में यहूदी बने रहने के अलग अलग वैध तरीके हैं।
ये समझने का एक अच्छा तरीका है। और ज़ायनिज्म का इस पूरी तस्वीर में क्या स्थान है? आपने कहा था ये मुख्यतः एक राजनीतिक आंदोलन था?
हाँ, ज़ायनिज्म मुख्यतः यूरोप में बढ़ते यहूदी विरोध, एंटीसेमिटिज्म की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा। ये एक राजनीतिक आंदोलन था जिसका लक्ष्य यहूदियों के लिए उनकी ऐतिहासिक भूमि यानी फिलिस्तीन में एक राष्ट्रीय घर बनाना था। ये लक्ष्य 1948 में इसराइल राज्य के रूप में साकार हुआ।
और इसका धर्म से क्या रिश्ता रहा?
ये आंदोलन काफी हद तक धर्मनिरपेक्ष था, हालांकि इसमें धार्मिक तत्व और धार्मिक ज़ायोनिस्ट भी हमेशा शामिल रहे हैं। इसराइल राज्य का बनना यहूदी इतिहास में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है, लेकिन इसने धर्म, राजनीति और पहचान को लेकर नई बहसें और जटिलताएं भी पैदा की हैं, जो आज तक जारी हैं।
ये तो है। तो इस पूरी चर्चा से अगर हमें कुछ मुख्य बातें या सबक निकालने हों, तो वो क्या होंगे?
मेरे ख्याल से पहली और सबसे जरूरी बात तो यही है कि यहूदी धर्म कोई ठहरी हुई चीज नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली बातचीत, एक तर्क वितर्क की प्रक्रिया है। तलमूद इसका सबसे बड़ा सबूत है।
हाँ, वो बहस वाली बात।
दूसरी, इसमें सिर्फ पाठ ही नहीं, बल्कि उसकी व्याख्या भी उतनी ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा अहम है। वो मानवीय भूमिका, जैसा सोलोमन की एक और बात है, तोरा स्वर्ग में नहीं है, यह मनुष्यों के व्याख्या करने के लिए दी गई है।
यानी ईश्वर के वचन को समझना और उसे लागू करना, ये इंसानों का काम है।
बिल्कुल। तीसरी बात, विविधता में एकता का विचार। अलग अलग मतभेदों और धाराओं के बावजूद एक साझा इतिहास, साझा ग्रंथ और आम इसराइल यानी एक जन होने का गहरा एहसास इन्हें जोड़ता है।
चौथी बात, शायद वो समय और रोजमर्रा के जीवन को पवित्र बनाने पर जोर, जैसा शब्बात और दूसरे रीति रिवाजों में दिखता है।
हाँ, बिल्कुल। और पांचवी, जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है, वो है इस परंपरा की जबरदस्त लचीलापन और खुद को फिर से घड़ने की क्षमता। खासकर 70वीं ईस्वी में मंदिर के विनाश के बाद को वो बड़ा बदलाव।
हाँ, वो पोर्टेबल धर्म वाली बात।
हाँ, जैसा सोलोमन कहते हैं, मंदिर का विनाश यहूदी धर्म का अंत नहीं था, बल्कि उसके सबसे बड़े रचनात्मक नवीनीकरण की शुरुआत थी। रब्बियों ने स्थान के धर्म मंदिर को पाठ और समय के पोर्टेबल धर्म तलमूड और शब्बात से बदल दिया। ये दिखाता है कि कैसे गहरे संकट भी नए रास्ते खोल सकते हैं, रचनात्मकता को जन्म दे सकते हैं।
ये बातें तो वाकई किसी भी संस्कृति या समुदाय के लिए सोचने वाली हैं, खासकर आज के इस तेजी से बदलते दौर में। अच्छा, इन विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी या हमारी समझ के लिए क्या मतलब हो सकता है? हम इनसे क्या सीख सकते हैं?
कई चीजें सीख सकते हैं। एक तो जाहिर है, दूसरे धर्मों और संस्कृतियों को समझने में मदद मिलती है। यहूदी धर्म को सिर्फ पुराने नियमों या ओल्ड टेस्टामेंट तक सीमित न देखकर उसकी पूरी जटिलता और विकास को देखना जरूरी है, जो स्टीरियोटाइप्स हैं उनसे आगे बढ़कर।
हाँ, जैसे चुने हुए लोग वाली धारणा को सही संदर्भ में समझना।
बिल्कुल। और अपनी संस्कृति या समुदाय के लिए भी शायद कोई सबक हो। यहूदी इतिहास दिखाता है कि कैसे एक संस्कृति हजारों साल तक इतने बिखराव और मुश्किलों के बावजूद अपनी मूल पहचान बनाए रखते हुए भी बदल सकती है, अनुकूलन कर सकती है।
इसका राज क्या हो सकता है?
शायद इसका राज ज्ञान की परंपरा, पाठ और व्याख्या पर जोर, समुदाय पर जोर और संकट को रचनात्मक मोड़ देने की क्षमता में है।
एक और बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो है बहस और असहमति को महत्व देना, तलमूड का वो मॉडल। ये सिखाता है कि अलग अलग नज़रियों को सहेज कर रखना और उन पर स्वस्थ बहस करना भी कितना ज़रूरी है। ये तो आज के समाज में सिविल डायलॉग के लिए बहुत बड़ा सबक है।
निश्चित रूप से। और आखिर में ये समझ हमें दुनिया में हो रही घटनाओं, खासकर मध्य पूर्व से जुड़ी खबरों या फिर इसराइल और डायस्पोरा के यहूदियों के बीच के रिश्तों को समझने में एक बेहतर नज़रिया दे सकती है।
तो वो क्या होगी? मेरे लिए तो शायद यही होगी कि तर्क वितर्क और असहमति को भी सीखने और सत्य के करीब जाने का एक पवित्र रास्ता माना जा सकता है। ये सोच काफ़ी अलग लगी मुझे।
ये वाकई ख़ास है और मेरे लिए शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि यहूदी धर्म किसी म्यूजियम में रखी चीज नहीं है, बल्कि एक जीवित, सांस लेती, बदलती हुई सभ्यता है। इसकी पहचान ही इसकी निरंतर बातचीत, व्याख्या और अनुकूलन की प्रक्रिया में है। ये तयशुदा जवाब देने से ज्यादा गहरे सवाल पूछने और उन पर लगातार सोचते रहने का नाम है।
तो अंत में शायद यहूदी होना एक ऐसी प्राचीन और लगातार चलने वाली कहानी का हिस्सा होना है जिसे हर पीढ़ी विरासत में पाती है, अपने समय के हिसाब से उसकी व्याख्या करती है और आने वाली पीढ़ी के लिए उसे आगे लिखने में अपना योगदान देती है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।